मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 मार्च 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत करने के साथ ही साथ मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और आप सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से एक दूसरे को होली की पूर्व शुभकामनाएं भी देता हूं। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, मालूम है कि कल होली का त्यौहार है, इस दिन गजेटेड हॉलीडे होता है और स्वाभाविक तौर पर कल मैं सीधे सीधे आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करने से वंचित रहूंगा, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आप सबको शुभकामनाएं देना उचित समझा और फिर इसलिए भी कि इसी बहाने होली को आधार बनाकर कुछ बातें कर ली जाएं। तो मित्रों, आइए आज होली को ही आधार बना करके उस पर कुछ चर्चा करते हैं। कभी होली के त्यौहार के बारे में आप सोचिए तो आप थ्रिल्ड रह जाएंगे। थ्रिल्ड रोमांचक इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में इस त्यौहार का मतलब क्या है, क्यों ये त्यौहार बनाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए, दूसरे त्यौहारों को तो हम जोड़ लेते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ त्यौहार है, ये हमारे कृषि उत्पादों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आप होली के त्यौहार को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी असफलता हाथ लगती है। हालांकि होलिका दहन को हम प्रहलाद के बचाने के आधार को जोड़ करके और होलिका दहन को हम जस्टिफाई कर देते हैं कि किस तरह से प्रहलाद की रक्षा हुई थी, यानी कि सत्य कवच की तरह हमारी रक्षा करता है। हम चाहें तो खासकर जो चादर उड़ाई गई थी प्रहलाद को जलते हुए अग्नि से रक्षा के लिए, तो उसे आप एक सत्य का कवच कह सकते हैं। अन्यथा कोई बहुत बड़ी दूसरी चीजें नहीं मिलती, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये होली का त्यौहार एक ऐसा अद्भुत त्यौहार है, ऐसा व्यापक त्यौहार है जो एक तो प्राचीनतम त्योहारों में से एक है, प्राचीनतम अभी का ही नहीं है। दूसरा कि दुनिया के लगभग लगभग सभी देशों की संस्कृतियों में, चाहे वो शिष्ट संस्कृतियां हों या जनजातीय संस्कृतियां हों, होली किसी न किसी रूप में मौजूद आपको दिखाई देगी, भले ही वो उस रूप में न हो जैसा कि वो हमारे यहां है। उदाहरण के तौर पर गोवा में या ब्राजील, चिली, लैटिन अमेरिकी देशों में चले जाइए तो वहां आपको एक त्यौहार मिलेगा कार्निवाल। उसमें लोग चेहरों पर मुखौटे लगा करके और सड़कों पर नाचते गाते हुए डांस करते हुए और प्रोसेशन निकालते हैं और खूब हल्ला गुल्ला गाना बजाना सब कुछ होता है। चेहरे भी बकायदे रंगों से दूसरी चीजों से पोत लेंगे, रंगीन कपड़े पहने हुए निकलते हैं और बड़ा अलमस्ती का वो माहौल होता है। चिली का तो कार्निवाल मैंने देखा भी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इसे हम सीधे सीधे धर्म या अपनी कृषि संस्कृति या औद्योगिक संस्कृति उन सबसे भी नहीं जोड़ पाते हैं और सबसे प्राचीनतम त्यौहार भी है और दुनिया के ज्यादातर देशों में यह मौजूद है, तो आखिर कोई ना कोई बात तो होगी और वो बात भी होगी तो वो छोटी मोटी बात नहीं होगी। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है और बहुत जबरदस्त कारण है और यह इसका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। जिसने भी होली के त्योहार की रचना की, इसे गढ़ा, वह व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट रहा होगा। साइकोलॉजिस्ट किस मायने में? इससे पहले, काफी पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, इसके बाद सब कॉन्शियस माइंड होता है और इसके बाद हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, है ना। हम जो कुछ भी सुनते हैं, करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो सब के सब हम कॉन्शियस माइंड पर करते हैं और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब के सब हमारे कॉन्शियस माइंड से होता हुआ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर सब कॉन्शियस माइंड से होता हुआ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो ये हमारी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने कमोवेश स्वीकार कर ही लिया है और इसी तरह से हमारी चेतना का निर्माण हुआ है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, कह लीजिए हमारी आदतें बनी हैं, इसी आधार पर हम दूसरों से बातचीत, व्यवहार, चेष्टाएं सब करते रहते हैं। अब आप देखिए कि जब समाज की संरचना हो गई पहले तो आदमी घूमता रहता था, अकेले में था, उसको किसी की कोई चिंता नहीं थी, तो कोई रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन जब समाज बना तो समाज की व्यवस्था के लिए यह जरूरी समझा गया कि कुछ नीति नियम बनाए जाएं, कुछ अनुशासन स्थापित किए जाएं, उसका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाए। तो जब अनुशासन बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए और उन्हें अनिवार्य कर दिया गया, तो वो पहला मौका रहा होगा जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब मनुष्य अपने आप को उतना फ्री महसूस नहीं कर सका। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि रूसो ने सीधे सीधे कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह हर जगह बंधनों में जकड़ा हुआ है। पैदा तो वह स्वतंत्र हुआ है, यानी कि उसकी जो चेतना है वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल किसी भी तरह के बंधन में बंधना नहीं चाहती, उसे स्वीकार नहीं है। लेकिन अगर आपको व्यवस्था बनाए रखनी है तो कुछ न कुछ बंधन तो आपको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। तो समाज ने कुछ बंधन लादने शुरू किए। जब बंधन लादने शुरू किए तो शुरुआत में तो थोड़े बहुत बंधन ही रहे होंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि इतने बंधन इतने बंधन इतने बंधन लाद दिए गए और लादते चले गए, और अभी भी हम लादते चले जा रहे हैं, कि हमारी स्वतंत्रता, चेतना की स्वतंत्रता तो बिल्कुल गायब ही हो गई है, खत्म ही हो गई है। दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो होली का त्योहार है वो हमारी उसी स्वतंत्रता की छटपटाहट को व्यक्त करता है, एक दिन के लिए ही सही, कि हमें रोका गया है, हमें दबाया गया है, हमें बोलने नहीं दिया गया है, और एक दिन हमें ऐसा मिलता है जब हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी जो दमित इच्छाएं हैं, जो दमित भावनाएं हैं, उनको सामने लाएं। आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा की गई वॉमिटिंग है। आपको अनुभव होगा कि किस तरीके से जब हम अंदर से बहुत मितली आने लगती है, तो मितली आने के बाद जब वॉमिटिंग हो जाती है तो मन को बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, होली के त्योहार की संरचना का उद्देश्य कमोवेश लगभग लगभग मुझे इसी तरह का दिखाई देता है। और यूनान में जो अरस्तु ने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी है कैथारसिस के तहत की है, उसमें भी यही तत्व दिखाई देता है कि किस तरीके से हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जो छटपटाहट हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, वो सामने आए। भले ही आज देखिए हम दावा कर सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हैं और डेमोक्रेसी में तो बोलने की बड़ी स्वतंत्रता होती है, चलिए राजनीतिक स्वतंत्रता तो कुछ सीमा तक है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन समाज का आप क्या करेंगे? आप देखिए कि समाज ने कितने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। हर समय आपको जकड़न महसूस होगी, हर समय जकड़न महसूस होगी। और जब मैं भारतीय समाज के बारे में सोचता हूं तो वहां जकड़न कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिखाई देती है। परंपराओं के नाम पर, अनुशासन के नाम पर, शिष्टता के नाम पर, धर्म के नाम पर, पता नहीं किन किन नामों पर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हमारे अंदर का कोई है जो लगातार सिसक रहा है, रो नहीं पा रहा है लेकिन सिसक रहा है, और सिसक रहा है तो स्वाभाविक है कि उसे हंसने की इजाजत नहीं है, वह हंस भी नहीं पा रहा है। और दोस्तों, ये जो स्थिति होती है बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह चीज बहुत बुरी होती है। अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि हम उसे कहें। हाँ, कहने का तरीका हमारा अपना हो सकता है, वो एक शिष्ट तरीका हम निकाल सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम अंदर ही अंदर घुटते रहें, हमें चाहिए कि हम अपनी बात दूसरों के सामने रखें। और इसीलिए हमारे यहां एक शब्द आया है, हमराज। देखिए, हमराज का वैसे मतलब तो होता है दोस्त, लेकिन ये जो हमराज है ये दोस्त से भी बढ़कर है। हमराज यानी कि वही वह है जो मेरे रहस्यों को जानता है, मेरे मन को जानता है, अंदर क्या चल रहा है उन सारी बातों से वो वाकिफ है। तो जो इतना क्लोज है उसी से ही तो हम ये सारी बातें कह रहे हैं। तो हमराज दोस्ती से कई गुना अधिक बढ़कर निभाया जाने वाला संबंध है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पास एक एक हमराज तो होना ही चाहिए। और होली के त्योहार को आप इसी तरह का एक हमराज मान सकते हैं जो सबके लिए है और एक दिन आता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे होली का त्योहार भी एक शिष्ट रूप धारण करता चला जा रहा है। अब ये तो मित्रों सामाजिक विकास के क्रम में होता ही है, इसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। खैर तो चलिए, मैंने थोड़ी सी बात चेतना अवचेतन और अचेतन को लेकर के की, और मैं समझता हूं कि इससे होली के त्यौहार से हमें एक मैसेज तो लेना ही चाहिए कि हम अपने अंदर की कलुषता को, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, उसे बाहर निकालने के लिए रास्ते तलाशते रहें। तो मित्रों इसी के साथ ही एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत पूर्व शुभकामनाएं। आप सब होली को खूब एंजॉय करें। परसों फिर मुलाकात होगी और फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।